राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा। प्रिय दामोदर देश भक्तवृंद, नित्य भागवत सेवा में श्रीमद् भागवत के दसम स्कंद के अंतर्गत 33वें अध्याय में भगवान की महारास का वर्णन का श्रवण श्रावण महीने में आप कर रहे हैं। और श्रावण का अर्थ है श्रवण, और इसके बाद आता है भाद्रपद, उसका मतलब है मंगल, जिसमें प्रकट होता है कृष्ण का। सो जो श्रवण करेगा उसके जीवन में कृष्ण का प्रकट्य होगा, कृष्ण प्रेम का प्रकट्य होगा। और सौभाग्य से ये तो बड़ा अद्भुत संजोग अपने आप बना है कि श्रावण के महीने में महारास के श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण समय है असल में। ये तो कृष्ण का अति अधिक कृपा है। एक बात सबको पुनः याद करा दें कि रस संबंधों से होता है। जब संबंध होता है तो उससे रस उत्पन्न होता है, और वो रस एक इस विशेष आनंद प्राप्त कराता है, और उस आनंद में इतना मगन हो जाते हैं कि उसको पुनः प्राप्त करने की जिज्ञासा सदा बनी रहती है। तो ये दो प्रकार का रस होता है, एक भक्ति का रस, एक भौतिक रस। ये जो रास है ये भक्ति का रस है, जो जिसको उत्पन्न करने के लिए पांच भावों को मिश्रित होना पड़ता है। कल कहा था, ये आज फिर याद रखिए। श्री भक्ति रसामृत सिंधु में जो रस है वो श्रीमद् भागवत से लिया गया है। ये रस माल्यम जो है भागवत, रस का आलय है, रस का सागर है, उसी से रस को लेकर भक्ति रसामृत सिंधु को भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी को बिंदु के रूप में दिया सिंधु को। उस रस को प्रकट होने के लिए पांच भावों का मिश्रित होना आवश्यक है। उसमें पहले है स्थाई भाव, और स्थाई भाव दास्य सबका होता है। महाप्रभु ने शांत भाव को रसास्वादन में स्वीकार नहीं किया है, तो दास्य भाव तो सबका होता ही है। और यहां जो विशेष रूप से गोपियों का दास्य भाव है, निशुल्क दासी का बोलती हैं, सखा भी बोलती हैं, सखा उदीयताम बोलती हैं, और गोपियों का माधुर्य भाव तो परिपुष्ट है ही। तो ये रास में अब जो हम वर्णन सुनने जा रहे हैं, इसको बोलते हैं विभाव, इसको बोलते हैं अनुभाव, इसको बोलते हैं अष्ट सात्विक भाव, और इसको बोलते हैं संचारी भाव। ये चार प्रकार के भाव जैसे प्रकट होते हैं गोपियों के माधुर्य भाव में, तो रस का जो प्रकट्य होता है उसको रास कहते हैं। जैसे नृत्य है, ये अनुभव है, कृष्ण को देखा और मधुर हृदय में भावना प्रेम की उत्पन्न हुई, और नृत्य से हम ये सामान्य कहते हैं कि लोग जब आनंद में होते हैं, बड़े खुश होते हैं, तो क्या करते हैं? दुनिया में तीन ही काम करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और खाते हैं। और यही तो इस कान में प्रभुपाद ने हमको दिया है, चैंटिंग डांसिंग एंड फीस्टिंग। तो ये हमारा तो रास उत्सव नित्य है भाई। गोपियां क्या कर रही हैं? नृत्य कर रही हैं और गा रही हैं, और कृष्ण के मधुर रस को पी रही हैं। ये बड़ा उत्सव है अपने आप में, रास उत्सव है, सम्यक रूप से प्रकट हुआ है। तो कल हमने इसमें देवताओं ने अपनी दुमदुमियां बजाई, पुष्प वृष्टि की, गंधर्व ने अपने चित्ररथ ने, गंधर्वों के मुख्य अधिपति ने गंधर्व स्त्रियों के साथ गान शुरू किया। तो इतना ज्यादा शोर उसका था कि गोपियों का अपना जो गान था उसका क्या हाल था। तो आज का श्लोक हम पढ़ने जा रहे हैं, पांचवा, और इस श्लोक का भाव है वल्यानाम नो पुराणाम किंकरीनाम च योषिताम सप्रियाणाम अभुचल अभूषबद्ध अभूषबद्ध तुमलो रास मंडले। वल्यानाम कहते हैं जो जो हाथ में यहाँ बाजू बंद की तरह लगाते हैं, वलिया नाम आर्मलेट्स। अब चाहें तो मैं इसको आपके लिए शेयर कर दूं ताकि आप इसको देखते रहें, जो आप तो प्राय अच्छा आपका अपना शेयर है, ठीक है, ओके।
सुभाष प्रभु जी, प्रभु जी को राइट्स दे दीजिए प्रभु जी।
नहीं, अगर आप चाहें तो मैं ये शेयर ये आपका हिंदी में रखना है तो कैसे रखो पता नहीं, ये तो मेरे पास इंग्लिश में है,
ठीक है प्रभु जी।
वल्या नाम का मतलब है जो बाजू बंद, निपुरा नाम जो पांव में निपुर होते हैं, और किंकरी नाम ये बाजू बंद है और हाथ के कंगन भी कहते हैं, और किंकणी होती है जो कमर के ऊपर बहुत सुंदर अपने जो जो पहनती है वो गरारा पंचरंगी, उसके ऊपर गोपियां बहुत छोटी छोटी घंटियां बांधती हैं कमर पे, और गोपियों के लिए शब्द है च कह के योषिताम। योषिताम का मतलब जो प्रेम से भरी हुई गोपियां हैं, जो ये सुंदर श्रृंगार जिनका किया हुआ है, सब प्रियाणाम, सब प्रियाणाम वो अपने प्रीतम के साथ थी, श्री कृष्ण के साथ थी। तुमलो अभू शब्द, अभू शब्द उन सब का, कंकणी का, निपुरों का और बाजू बंदों का या चूड़ियों का जो भी है, झनकार होने लगी, पायल की छनकार होने लगी, और उस शब्द से तुम लो बहुत सुंदर मधुर शब्द रास मंडले, इसका अर्थ है नृत्य शुरू हो गया। जब हाथ हिलने लगे, इशारे होने लगे, पांव चलने लगे, ये आगे वाले श्लोक में आएगा दो के बाद, तो ये जो शब्द ये शब्द है तो इसका यहां भाव ये है, तो बहुत इसका हम अपने श्रीधर स्वामी ने इसका बहुत सरल शब्दों में हिंदी में लिखा है, उस रास मंडल में अपनी प्रियतम कृष्ण के साथ विद्यमान सभी गोपियां नृत्य कर रही थीं, अतएव उनकी कलाइयों के कंगन, पैरों के निपुर तथा करधनी के छोटे छोटे घुंघरू से सब एक साथ शब्द करने लगे, इसलिए उन सबों की बड़ी ही जोर से ध्वनि हुई। ये इनका हिंदी अनुवाद शब्दों में है। अपने प्रीतम कृष्ण के साथ विद्यमान तुमुल अर्थात सबों को सम्मिश्रित जोर से ध्वनि, अकेली की नहीं सबकी मिलकर जोर से ध्वनि होने लगी। तो इसको कहने का भाव क्या है, तब चक्रवर्तीपाद लिखते हैं च का यहां अर्थ है जो दूसरे भी वाद्य बज रहे थे, जैसे आगे आएगा कि ढोलक बज रहे थे, दुमदुमिया पहले आया है वो बज रही थी, परंतु मुख्य बात ये कही गई है वो सारे वाद्य मुख्य नहीं थे, उन्होंने गोपियों के इन सुंदर निपुरों के झनकार को आच्छादित नहीं किया था। ये बहुत बड़ा अच्छा संदेश और संकेत है इसमें। जैसे हम कीर्तन करते हैं तो गाने वाले का आवाज जोर जोर से ढोल और मृदंग और उससे दब नहीं जाना चाहिए। जो मुख्य गाने वाला है उसके आवाज को मुख्यता दी गई है और अन्य जो शब्द थे वो थोड़े से धीमे से उसकी सहायक है, न कि उसके ऊपर ज्यादा प्रभाव डालते हैं। अब उत्सव का जब जीव गोस्वामी कहते हैं उत्सव का वर्णन हो चुका, देवताओं ने उसमें अपने बाजे बजा लिए, तो रास नृत्य के समय गोपियों के अपने जो आभूषण है उनसे जो सुंदर ध्वनि निकली, विशेष रूप से उनकी कमर में बंधी हुई करधनी जो गोपियों की थी, उसमें बहुत छोटे छोटे जो झुनकार करने वाले बेल लगे हुए थे, जो जो घंटियां थी निपुर थे, उनमें से आवाज आया। योषितम का अर्थ है ये स्वाभाविक, वो चलती हैं तब भी ऐसा ही उनके अंदर से मधुर आकर्षक और सबको लुभाने वाला ध्वनि होती रहती है, शब्द होती रहती। तो ये कौन थी जिनके शब्द हुआ, तो ये कृष्ण प्रिया थी। और रास मंडल में देखे जैसे वो चारों ओर घूम रहे थे, तो इसका मतलब चार और पांच में वाद्य का वर्णन है, देवताओं के दुमदुमियां आदि बजना और गाने का, वो बैकग्राउंड म्यूजिक समझ लो, और मुख्य जो है गोपियों के अपने निपुर कंकणी और चूड़ियों की झनकार जो है, और उसके साथ गोपियों के अपने मुख से जो गाया जाएगा शरद ऋतु का गीत, वो मुख्य है। अब छठे श्लोक में कह रहे हैं तत्रातिशुभेताभिर् भगवान देवकी सुतः मध्ये मणिनां हैमानां महामरकतो यथा। तत्र वहां उस रास मंडल में जब नृत्य हो रहा था, सुंदर गोपियों के आभूषणों की ध्वनि गूंज रही थी, अति शुभे बहुत ज्यादा अति सुंदर मधुर चमक रहे थे, शोभायमान हो रहे थे। कौन? भगवान देवकी सुत। देखिए कितना बड़ा सावधानी से शब्द सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकला है कि ये लीला भगवान की है, ये कोई भौतिक हाड मांस चाम के शरीर वाला कामी पुरुष लीला नहीं कर रहा है, ये भगवान लीला कर रहा है। देवकी सुतः, इस देवकी की परिभाषा में यशोदा का वर्णन आएगा। सो कौन अति सुंदर लग रहे थे गोपियों के मध्य में? भगवान देवकी सुतः, ऐसा नहीं लिखा है कामी कृष्ण, ये बहुत सभ्य भाषा सुखदेव गोस्वामी सावधान करने के लिए लिख रहे हैं। हमने पहले 29वें अध्याय में लिखा था तारात्रि भगवान, वहां भी शब्द भगवान से इस लीला को शुरू किया है, रास का शुभ आरंभ भगवान शब्द से हुआ है। अब तुलना दे रहे हैं, अब अगर कोई ऊपर से देखे तो कैसे लग रही है ये रास मंडली? मध्य मणिनाम हैमानाम कहते सोने को, सोने के मणियों के मध्य में, जैसे सोने के बहुत सी मणियां चारों ओर बिखरी हुई हों, उनके बीच में महामरकतो यथा। ये महामरकत एक वचन में है, क्योंकि श्री कृष्ण एक है, गोपियां तो 33 करोड़ है, कितनी है 3300,000 कितनी लिखी थी आपने देखी, कृष्ण एक है इसलिए एक वचन है महामरकत, और महामरकत है नीलमणि, क्यों कृष्ण तो नीलमणि है और गोपियां स्वर्ण वर्ण की है, तो स्वर्ण वर्ण के मणियों के बीच में नील वर्ण का श्री कृष्ण अति सुशोभित सुशोभित हो रहा है, जैसे आभूषणों में सोने के मणियों के बीच में नील मणि, आप और नीले और पीले को मिलाएंगे तो कौन सा रंग होता है? आप लोग अपने जीवन में, लोग कहते हैं हमारा जीवन हरा भरा हो, भाई सुख सुविधा को कहते हैं हरा भरा होना। तो हमसे अगर आपसे पूछें कि आपको हरा अपना जीवन करना है, हरे जैसा रंग लगे, तो क्या करना पड़ेगा, कौन से दो रंग मिलाने पड़ेंगे? पीला और नीला, येलो एंड ब्लू, तो हो जाएगा ग्रीन। तो ये तो येलो और ब्लू का मिक्सचर होके सब जगत के लिए हरियाली बन गई है ये, और ये महारस रास सब सारे संसार के लिए को हरा भरा करने के लिए है, कृष्ण प्रेम से परिपुष्ट करने के लिए, काम के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए है, इसको देखना है। तो ये उदाहरण के साथ महामरकतो, ये महा कहने आगे इसका और वर्णन आएगा, तो ये दो लाइनों में उपमा है, उसको एलागोरी उसको कहा जाए, एनालॉजी दी गई है, और दो लाइन, पहली लाइन में भगवान देवकी सुत गोपियों के मध्य में अति शोभायमान हो रहे थे। सो इसका हिंदी अर्थ पढ़ लें, उस रास क्रीड़ा में उन गौर वर्ण की गोपियों के बीच में विद्यमान श्याम वर्ण के भगवान की उसी तरह से अत्यधिक शोभा हो रही थी, जैसे पीत वर्ण के स्वर्ण मणियों के बीच में विद्यमान नीले महामरकत मणि की शोभा होती है। नील मणि के समान, स्वर्ण मणियों के समान, नील मणि के समान श्री कृष्ण, स्वर्ण मणियों के समान गोपियों के बीच में उन गोपियों से आलिंगित होकर सुशोभित हो रहे थे। ये श्रीधर स्वामी का भाव है, अथवा गोपियों की दृष्टि के अभिप्राय से ये बात कही गई है। इसका मतलब गोपियां अपने आप को श्री कृष्ण को मध्य में देख के ऐसे कही रही हैं। यहां मध्य पाद के बिना एक वचन है, एक मतलब एक श्री कृष्ण का यहां वर्णन है, इसका अर्थ ये हुआ। अब प्रभुपाद जी के शिष्यों का तात्पर्य देखते हैं, जो उन्होंने आचार्यों का भाव लिया है। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्री प्रभुपाद कहते हैं, देवकी वसुदेव की भारिया के नाम के साथ यशोदा का नाम भी एक देवकी है, ये आदि पुराण में वर्णन आया है। यशोदा को के दो नाम है, द्विनामानि नंद भार्या, नंद भार्या के दो नाम है, यशोदा देवकी इति च। तो नंद की पत्नी के दो नाम है, यशोदा और देवकी। तो रास क्रीड़ा तो नंद नंदन यशोदा नंदन कृष्ण की ही लीला है। वैसे भगवान शब्द कहने से भगवता का वर्णन है। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, भले भगवान श्री कृष्ण का प्रकट्य क्षत्रिय वंश में हुआ था, देवकी पुत्र थे वो, क्योंकि भगवान भले षडगुण संपन्न थे, छह ऐश्वर्य से परिपूर्ण थे, परंतु फिर भी इन गोपियों के मध्य में अति शोभायमान हो रहे थे। वो दोनों शोभाएं अपनी जगह पे थी, परंतु गोपियों के मध्य में उनकी शोभा अधिक लुभावने वाली थी, बहुत प्रिय लग रही थी। तो कल कृष्ण का जो रंग था नील वर्ण का, जो नीलमणि के समान है, वो स्वर्ण रंग की गोपियों के साथ मिलके महामरकत मणि हो गया, और नीलमणि मरकत हो गया। वैसे नीलमणि ब्लू होती है और मरकत ग्रीन होती है। महा इसलिए कहा गया है क्योंकि उसकी सुंदरता अति शोभायमान हो गया। कुछ कहते हैं मरकत जो शब्द है उसका अर्थ महामरकत मणि सफारी है, सेपहारी क्या कहते हैं। तो महामरकत का अर्थ हुआ वो था भले था नीलमणि लेकिन लग रहा था महामरकत मणि। और श्री जीव गोस्वामी लिखते हैं परीक्षित, श्री कृष्ण को तो आप जानते ही हो देवकी पुत्र है, आप ये भी जानते हो कि वो भगवान है, ऐश्वर्य संपन्न और परिपूर्ण है, गोपियों के मध्य में बहुत शोभायमान हो रहे थे। अथवा इसका अर्थ है वही बात लिखी है, यशोदा के नंदन है, क्योंकि देवकी सुत यशोदा का नाम है। परंतु गोपियों के बीच में बहुत बड़ा शोभायमान लग रहा है, इसलिए कहते हैं ये जो किशोर अवस्था है कृष्ण की, इसका पूर्ण लाभ है गोपियों के मध्य में विराजमान होना, और वो इस समय उसका ये चित्रण हो रहा है, उसका ये जो है उपमा दी जा रही है, और इसके लिए उदाहरण दिया गया है। और एक वचन में मध्य शब्द है, इसका मतलब है भगवान ने भले बहु ही रूप धारण किए थे लेकिन कृष्ण एक ही था, कृष्ण ज्यादा नहीं थे, अपने आप को अनेक रूपों में भगवान ने प्रकट किया था, और दो गोपियों के बीच में एक कृष्ण था, और मध्य में भी खड़े थे राधिका के संग में, और अपनी बांसुरी बजा रहे थे, वेणु वादन कर रहे थे, और उस रास मंडल को शोभायमान कर रहे थे। और इसका कर्म दीपी का नाम के शास्त्र में इस रास का वर्णन है, इतरे इत्रह बद्धकरह प्रमद्दा गणकल्पिता रास विहार विदहो मणि शंको गम अपि अम्मो ना वापुषा बहुदा विहत स्वकह दिव्यतनु सुहृदाम उभयो पृथग अंतरगम दयिता गण बध भुज द्वैत्यम मणि निर्मित मध्यगह शंकुलस विपुलारुण पंकज मध्यगतम तरुणी कुच युक परिरंभ मिलेद घोषणा घोषणानुराणुना वक्षणम उक्ष गतिम। एक तरफ एक गोपी का, दूसरे तरफ दूसरी गोपी का, रास मंडल में भगवान ने हाथ पकड़ लिया, और जैसे भगवान स्वयं जो है बहुत सुंदर भी मध्य में चमकते हुए जो है एक पिलर की तरह खड़े हो गए, और अकेले नहीं कई रूपों में प्रकट हो गए, वो ऐसे लग रहा था कि एक कमल, कैसा कमल, पिंक कमल, एक गुलाबी कमल, और एक मणिमंडित पिलर के बीच में प्रकट हो गया है, और मदमस्त वृषभ की तरह गोपियों के वक्षस्थल से उड़ते हुए कुमकुम के बीच में खड़ा था। बिल्व मंगल ने भी मध्य गहा संजगहो वेणु ऐसे कहा है कि भगवान मध्य में खड़े होके वेणु बजा रहे थे, और स्वर्ण आभूषण के बीच में जैसे मणि होती है ऐसे लग रहे थे। गोलोक में जो सोना है वो मणि बन जाता है, मरकट जो है एक शब्द है, भले कृष्ण अनेक थे परंतु वास्तव में कृष्ण एक ही है, और यहाँ मेघ चक्र, इस श्लोक में मेघ चक्र कहा है, इसका मतलब बादल के समान है, और उसके बीच में कृष्ण है सारे बादल, और उसके बीच में गोपियां हैं चमकती हुई बिजली। इसकी परिभाषा अगले श्लोक में करेंगे कि मेघों के बीच में बिजली चमक रही है, मेघ है श्री कृष्ण और बिजली है गोपियां। अब मेघ से बिजली को अलग नहीं किया जा सकता, मणि सोने से मणि को अलग किया जा सकता है, लेकिन मेघ से बिजली को अलग नहीं किया जा सकता। अरे भक्तों को तो बिजली रास्ता दिखा देती है भगवान को प्राप्त करने का, और दुष्टों के ऊपर बिजली गिरती है और उनका सर्वनाश कर देती है। तो ये लीला का दो ही भाव है, भक्तों को तो भगवान के प्रेम का रास्ता दिखा देगी, और दुष्ट अवहेलना करने वाले अवजानंती माम मूढ़ों के लिए ये जो है बिजली गिरेगी उनके ऊपर, तो इसको देखना उनका अधिकार ही नहीं है। और यहां भगवान श्री कृष्ण को एक वचन में कहा गया, यहां भगवान को महामरकट मणि कहा गया है, और स्वर्ण मणियों के बीच में बड़ा शोभायमान हो रहा है। ये शोभा कैसी है? गोपियों का आलिंगन करने से शोभा हो रही। फिर याद रखना चाहिए कि गोपियां श्री राधिका का विस्तार है, श्री राधिका कृष्ण का विस्तार है, ये शक्ति और शक्तिमान आपस में क्रीड़ा कर रहे हैं। ये कोई सामान्य संसार की लड़कियों और लड़के की बात नहीं है, ये भगवान के दिव्य प्रेम की परिकाष्ठा की लीला है, माधुर्य प्रेम की सर्वोपरि लीला है। श्रीधर स्वामी कहते हैं महामरकट का मतलब है सफारी, लेकिन होना भगवान है असल में नीलमणि, लेकिन लग रहे हैं अभी हरे हैं बिल्लू, क्योंकि पीला रंग का उसके ऊपर परछाई पड़ रही है, तो पीले के शेड के कारण नीला कृष्ण हरा लग रहा है। इसलिए इसको एमराल्ड कहा है, और ये नृत्य के कारण हुआ है, ये उनका अंदर का स्वभाव नहीं है। अब ये थोड़ा श्लोक है, इसका तात्पर्य और चलेगा। तो रास नृत्य शुरू हो गया, वाद्य का वर्णन हो गया, और फिर कैसे लगता है कृष्ण नृत्य करता हुआ गोपियों के बीच में कैसे लग रहा है उसका वर्णन हो गया उदाहरण के साथ, स्वर्ण मणियों के बीच में नीलमणि। अब नृत्य कैसे हो रहा है और किसके साथ हो रहा है, इस श्लोक का वर्णन सुनिए। पादन्यासै भुजविधुत्तिभिः सस्मितै भुरो विलासै भज्यन् मध्येश चलकुच्चपटैः कुण्डलैः गण्डलोलैः स्वेद्यं मुख्यः कवर रसा कवर रसना गंथयः कृष्ण वदवः। ये कृष्ण वदवः शब्द के बड़ा भारी ध्यान देना है, ये शब्द सारे शंकाओं का समाधान है। गायन्तस्तं तरित इव तमेघ चक्र व्रजेहु। पाद न्यास, अब गोपियां चरण कैसे हिला रही थी, गोपियों का एक चरण आगे पीछे कैसे चल रहा था, कृष्ण उसके साथ ताल कैसे मिला रहे थे। तो पहले पाद न्यास, चरणों का जो नृत्य में उठाया जाता है, जैसे हमारे को हरे कृष्ण महामंत्र में स्वामी स्टेप सिखाए जाते हैं, एक पांव इधर एक पांव उधर, तो ये नृत्य में गोपियां चरण कैसे रख रही थी। भुज विधूति भी ही, और हाथों से कैसे इशारा कर रही थी, जो शब्द कह रही थी मुख से गान का, उसको हाथ के इशारे से समझा रही थी। तो इसका अर्थ कभी कृष्ण के हाथ में हाथ होता था, कभी हाथ कृष्ण के हाथ से छुड़ा के उस का अभिनय करती थी जो शब्द मुख से बोल रही थी। भुज विद्युत भी ही सस्मित ही, अब पांव का चरणों की बात हो गई। देखो ये है मर्यादा, दर्शन करना है तो चरणों से करना चाहिए। और एक जगह तो दूसरे स्कंद भागवत में लिखा है कि हमारी भक्ति में प्रगति ही चरणों के ऊपर ध्यान करने से होती है। जब तक अधिकार नहीं हो तो उसके ऊपर का ध्यान बढ़ाना ही नहीं चाहिए। और इसलिए आगे भी कहा है कि भागवत के पहले और दूसरे स्कंद को भगवान के चरण कमल कहा है, उसके सिद्धांत को जब तक अच्छी तरह से समझाना चाहे तो आगे बढ़ना साधु संग में संभव है, लेकिन अकेला संभव नहीं है। हरि बोलो संग चालो, ये चैतन्य महाप्रभु का आदेश है। तो चरणों से देखो, गोपियों का वर्णन भी सुखदेव मर्यादा के अंतर्गत कर रहा है। जैसे हम मंदिर में जाते हैं भगवान का दर्शन करना है तो चरणों से करना चाहिए, वो बहुत सुरक्षित है, वो नौका है, उसका ध्यान करने से भवसागर समाप्त हो जाता है। गौ के बछड़े के खुर में जैसे पवित्र और शुद्ध जल है, ऐसे ये संसार ही प्रेममय हो जाएगा। और फिर जैसे हमारा अपना अंतःकरण की शुद्धि हो, फिर आगे भगवान के चरणों से ऊपर निपुणों का ध्यान करें, निपुणों से ऊपर फिर भगवान के घुटनों का, पिंडलियों का ध्यान करें, फिर कर ध्वनि भगवान के बंधी होती है बहुत सुंदर कमर के ऊपर, उसका ध्यान करें, फिर मध्य भगवान के नाभि के स्थान का ध्यान करें, फिर वक्ष स्थल का ध्यान करें जिसके ऊपर कौत्सव, जिसके ऊपर श्री वत्स चिन्ह है, भृगुलता का चिन्ह है और कौत्सव मणि है कंठ के ऊपर, फिर मुस्कुराते हुए मुख के ऊपर जाएं। तो यहाँ बहुत सुंदरता से सुखदेव गोस्वामी चरणों से शुरू कर रहे हैं। और कुछ भक्तों की मर्यादा ही चरणों तक होती है। जैसे आपको रामायण से याद है कि ऋषि मुख पर्वत के ऊपर राम और लक्ष्मण को आकाश से गिरे हुए आभूषण सीता के द्वारा फेंके हुए सुग्रीव ने दिखाए, तो राम जी ने पूछा था, लक्ष्मण ये आभूषण आप जानते हो जानकी के? लक्ष्मण ने कहा, पायल को मैं जानता हूँ, ये जानकी के चरणों में है, रोज मैं प्रणाम करता था, लेकिन गले के आभूषण मैंने कभी नहीं देखे। ये मर्यादाएं भी शास्त्र की बहुत महत्वपूर्ण है। तो दृष्टि को कहाँ से शुरू करें, रास लीला देख रहे हैं, मूर्ख लोग तो सीधा जो है काम का भाव देख रहे हैं, और ये उनके चरणों से कृपा प्राप्त कर रहे हैं, पद न्यास को देख रहे हैं, उनके कर विधूति भी हाथों के भाव को देख रहे हैं, फिर ससुमितई भ्रु विलासई, अब मुस्कुराते हुए मुखमंडल का वर्णन कर रहे हैं। और जो भ्रु है, ये जो भ्रुए हैं, ये वो कैसे एक एक शब्द के ऊपर उसका अभिनय, उसका भाव प्रकट कर रही हैं, विलासई, और फिर मुस्कुराती हुई अपने भ्रुओं को बहुत ही रसमय रूप से मटकाती हुई भज्यम। वैसे भज भज धातु जैसे भगवान को त्रिभंग ललित, वो भज भंग शब्द है, वो भज शब्द है। तो भगवान श्री कृष्ण तीन जगह पे टेढ़ी है, तो गोपियां टेढ़ी हो रही हैं कहां, कमर में मध्यई। और गोपियों के लिए एक बहुत सुंदर शब्द होता है सुमध्यमा, उनकी कमर बहुत पतली है, नितंब भारी है, वक्षस्थल भारी है, बीच में कमर बहुत पतली है, ये सुंदरता की पहचान है। मध्यई, कमर के जगह पे टेढ़ी हो रही है, और चल, और अब आगे चल रही है इस भाव से, तो उससे अंतर क्या, उससे हो क्या रहा है, नृत्य कर रही है तो क्या हो रहा है, कुच पट ही, ये जो वक्ष स्थल है उनका, उसके ऊपर जो पट ही कपड़ा है, दुपट्टी है, दुपट्टा जो है, कच्चा कुच पट ही, वो कपड़ा, और उसके साथ साथ एकदम सावधानी से आगे ले जा रहे हैं कि ध्यान से सुनो, देखो मत, कहते कुंडली और कानों के कुंडलों को देखो, इसका मतलब इनके ऊपर तुम्हें दृष्टि नहीं डालनी है, ये कृष्ण के प्रेम के लिए है, आनंद के लिए है, तुमको कान से केवल सुनना है, ये हमारी अपनी भाषा है, ये हमारी अपनी इसकी टीका है, जब ये पढ़ रहे हैं तो हमको समझ में आ रहा है। उनके वक्ष स्थल से, उनके स्तनों के ऊपर जो कपड़े का ऐसे है, वो जब नृत्य करेंगी तो नीचे जाएगा, लेकिन आपको सुनना है, ये देखना आपका काम नहीं है, ये कृष्ण के आनंद के लिए है, वो रस मूर्ति है, इस रस का रस आस्वादन करेंगे, आपको तो प्रार्थना करके केवल सुनना ही चाहिए। और वो इयरिंग का क्या कर रहे हैं, गंड लोलही, गंड कहते हैं उनके गालों के ऊपर, वो इयरिंग गालों के ऊपर ऐसे नृत्य कर रहे हैं, ये हम दामोदर अष्टक में श्री कृष्ण का ऐसा ही रूप, लसत कुंडलम गोकुले ब्राजमानम, वो चमकते हुए कुंडल गालों के ऊपर ऐसे नृत्य कर रहे हैं, तो गोपियां जो हिलाएंगी सर और नाचेंगी तो ये सब कुछ तो होगा, उसका वर्णन सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं, क्योंकि इस गोपियों को ऐसे देखोगे तो कृष्ण के ऊपर नजर जाएगी, हमारा लक्ष्य तो कृष्ण है लेकिन गोपियों की कृपा से मिलेगा। और स्वेद्यम, पसीना हो रहा है क्योंकि नृत्य हो रहा है, ये बड़ा शरद पूर्णिमा का नृत्य है, मौसम तो अच्छा है, फिर भी मुख ही मुख के ऊपर पसीने की बूंदें आ गई है। कवर, ये जो बाल का जूड़ा ऊपर बना रखा है, कवर रसना, उसके ऊपर जो रस्सा बंधा हुआ है, जो उनके ऊपर अच्छे से बहुत रेशमी रंगीन पट्टे बंधे हुए बालों के अंदर रेशमी, कवर कवर रसना आग्रंथय, आग्रंथय का एक अर्थ है कि अब जब नृत्य करने जा रहे हैं तो कम से कम कमर के ऊपर जो दुपट्टा है उसको भी जरा जोर से बांधना पड़ेगा, जूड़े को भी बांधना पड़ेगा, खुल न जाए, तो यहां है उसको अच्छी तरह से उन्होंने बांध लिया। कृष्ण वधवहा, ये वधु के वधु के तीन अर्थ हैं, एक पुत्र वधु, एक पत्नी, और तीसरा वधु का अर्थ जो है उसका भी भाव देखेंगे, यहां आचार्यों के मत में थोड़ा अंतर है। चक्रवर्ती पाद और सनातन गोस्वामी कहते हैं वधु का अर्थ पत्नी नहीं है, परंतु जीव गोस्वामी कहते हैं वधुनी, वधु का अर्थ है कृष्ण पत्नियां, वो कहते पत्नी के समान, लेकिन ये लीला का वर्णन करेंगे अभी 5 मिनट में, यहां तक पहुंचते हैं। कृष्ण वधु, कृष्ण की प्रेमिका है ऐसे लिखा है यहां, गायंत गा रही थी, किसके विषय में गा रही थी, तम कृष्ण के विषय में, अब ये शोभा कैसे दिख रही थी, उपमा दे रहे हैं, तड़ीदा, हाँ तड़ित कहते हैं बिजली का चमकना, एवं इस प्रकार ता मध्य उनके किसके मेघ चक्रे, जैसे बादलों के बीच में बिजली चमकती है, व्रेजोहु चमकती है, ऐसे गोपियां कृष्ण रूपी मेघ के बीच में चमक रही थी। तो अब इसका हिंदी अर्थ पढ़ते हैं, कभी तो अपने पैरों को आगे बढ़ाती थी और कभी अपने पैरों को पीछे कर देती थी। वे अपने हाथों को इधर उधर चमका कर विभिन्न प्रकार के भावों को बतलाती थी। कभी वे मुस्कुराती हुई कलापूर्ण ढंग से कटाक्षपात करती थी, तो कभी अपनी पतली कमर को इतना लचकाती थी कि लगता था जैसे उनकी कमर टूट ही गई। चूंकि वे बार बार झुकती थी, उठती थी, बिठाती, हाँ उठती थी, बिठाती थी या बैठती थी, उसके कारण उनके स्तन हिल रहे थे तथा उनके स्तनों के वस्त्र उड़ जाते थे। उनके हिलते हुए कानों के कुंडल गालों पर आ जाते थे। परिश्रम होने के कारण उनके मुख पर पसीने की बूंदें चमकने लग जाती थी और उनकी चोटी तथा करधनी की गंथी ही गांठ स्थिर हो जाती थी। इस तरह की भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा गोपियां, प्रियतमा गोपियां भगवान श्री कृष्ण के साथ गा गा कर नाच रही थी। उस समय ऐसा मालूम पड़ता था, ऐसे लगता था जैसे श्याम वर्ण के अनेक श्याम सुंदर रूपी श्याम वर्ण के मेघों के बीच में अनेक प्रकार की गौर वर्ण गोपियां रूप बिजलियां चमक रही हैं। जिस तरह गोपियों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण सुशोभित हुए, उसी तरह गोपियां भी भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुशोभित हुई। तो पहले कृष्ण को गोपियों के बीच में सुशोभित कहा था, देवकी सुत को, भगवान को, अब गोपियां कृष्ण के बीच में कैसे सुंदर हुई, ये दूसरे पक्ष की बात की जा रही है, ऐसा श्रीधर स्वामी का भाव है। गोपियां भी भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुशोभित हुई, इस बात को पाद न्यासो इत्यादि श्लोक के द्वारा सुखदेव जी ने कहा। भुज विद्युति भी अर्थात हाथों को इधर उधर संचालित करने के कारण भुज्या मई व मध्य अर्थात कमर को अत्यधिक लचकाने के कारण लगता था कि जैसे उनकी कमर टूटी गई। चल भी कुछ पटई अर्थात गोपियों के स्तन हिल रहे थे और उनका वस्त्र उड़ रहा था। गंडलोलही अर्थात गालों पर झूलने वाले, अश्वेत मुख ही परिश्रम करने के कारण उनके मुख पर पसीना आ जाने से, गोपियों की चोटी और करधुनी की गांठें स्थिर हो जाने से, उस रास में अनेक शरीर धारण किए श्याम वर्ण के भगवान कृष्ण मेघ समूह के समान थे। गोपियां अनेक वर्ण की गोपियां मेघों के चमकने वाली विद्युत के समान थी। उन सबों के गीत मेघ की गर्जना ध्वनि के समान थी। इस तरह से अन्य भी कलाएं की जा सकती हैं, अन्य भी कल्पनाएं की जा सकती हैं, ये भाव है श्रीधर स्वामी का। आइए श्रीधर स्वामी लिखते हैं कि बिजली का बादलों के बीच में चमकना और गोपियों के मुखमंडल पे पसीने का आना और उनका गाना बादल के गर्जन के समान है, ये उपमा है। आग्रंथ्य अग्रंथ्य भी पढ़ा जा सकता है, इसका मतलब बाल पहले जब नृत्य शुरू किया तो अच्छी तरह से बांधे थे, परंतु नृत्य के भाव में आस्ते आस्ते वो गांठें खुलने लगी। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती बात का अपना कपड़े हम पढ़ेंगे, फिर भी लिखा है हमारे प्रभुपाद जी के शिष्य ने कि गोपियां मुद्राएं, हाथ से मुद्राएं, आंख से, भ्रुवों से मुद्राएं, मुस्कुराहट से, मुद्राओं के द्वारा जो गाया जा रहा था उसका अभिनय कर रही थी। तो गाने का अभिनय हाथ से आंख से कर रही थी, इसलिए हम कहते हैं सामान्य हमारी परिभाषा में कि आप जो बोलते हैं वो नहीं सुनाई देता है, लेकिन आपके बॉडी लैंग्वेज से ज़्यादा मालूम पड़ता है। तो गोपियों के बॉडी लैंग्वेज का वर्णन है नृत्य में कि वो कितनी इस रस का रस आस्वादन कर रही थी। तो गाने के साथ जो अभिन्न है उसका वर्णन है। तो कभी कभी गोपियां बड़ी कलात्मक ढंग से कृष्ण के भुजाओं के साथ अपनी भुजाएं मिला लेती थी, और कभी कभी उनसे अलग करके और कोई मुद्रा में जो गीत गा रही थी उसका भाव प्रकट करती थी। और पाद न्यास का अर्थ है बड़ी कला से गोपियां बड़े ही कहा जाए कि सम्मानित रूप, बड़े ग्रेसफुली इतना कहा जाए कि महान गौरव के और प्रेम के साथ लुभावने भाले भाव से अपने चरणों का इधर से उधर पदन्यास करके नृत्य कर रही थी। सस्मित ही भ्रू विलशही, इसका मतलब प्रेम पूर्वक चितवन से अपने कटाक्षों को इधर उधर घुमा के अपने प्रेमी श्री कृष्ण को प्रसन्न कर रही थी। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, श्रीधर स्वामी के भाव को लिख रहे हैं, जैसे कृष्ण गोपियों के मध्य में सुशोभित थे ऐसे गोपियां भी कृष्ण के मध्य में अति सुशोभित थी। तो ये दोनों का समानता है। और पदन्यास का वर्णन है, पदन्यास का भाव है कि जो जो बाजा बज रहा था, जिस सुर में गा रहा था, उसके सुर के साथ सुर मिलाकर नाच रही थी। सुर के साथ सुर मिला के नाचने को पदन्यास कहा गया है। और ये बहुत रंगीन मधुर जो गान था उसके साथ साथ ताल मिल रहा था, और हाथों के साथ अभिन्न हो रहा था उन शब्दों का। बाकी सब तो हम पढ़ के आए हैं पहले ही। अब चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, यहां गोपियों को कृष्ण वधु कहा गया है। वधु का अर्थ होता है स्त्री, पत्नी या बहू। अगर यहां चक्रवर्ती पाद कहते हैं, अगर हम यहां पत्नी अर्थ ले ले तो फिर भीष्म की स्तुति में जहां कहा गया है कि मैं कृष्ण का शरण लेता हूं, जो गोपों की पत्नियों के साथ रासलीला कर रहा था, तो फिर इसका विरोध हो जाएगा। इसलिए सनातन गोस्वामी पाद ने वधू शब्द को इस श्लोक में कहा है स्वर्ण वर्ण की नारियां जिन्होंने कृष्ण का पूर्ण शरण लिया था और जिनसे कृष्ण ने रास लीला में आलिंगन किया था, और केवल एकमात्र कृष्ण ही उनका भोगता है और वो कृष्ण की प्रेमियां हैं। कृष्ण गोपीनाथ है और वो गोपियां हैं। तो वधू की ये परिभाषा कहा गया है, जो पत्नी के समान है। ये वैष्णो तोषणी में शिला सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं, शिला जीव गोस्वामी पाद कहते हैं। पहले वही भाव लिखते हैं, इसको कहते हैं आचार्य की परंपरा। ये आचार्य परंपरा है, आदि आचार्य टीकाकार श्री श्रीधर स्वामी है, और सभी उसी के भाव को लेके फिर उसी के ऊपर अपने अनुभूतियों को कह रहे हैं कि गोपियों के बीच में, गोपियों के मध्य में कृष्ण सुशोभित और कृष्ण के मध्य में गोपियां बहुत सुंदर लग रही थी। अन्य सब शब्दों का वही अर्थ है, इसलिए पुनः नहीं कह रहे हैं। चल कुछ चपट ही अब कुछ ये जो चल कुछ पट ही जो है इसका एक और भाव लिखा है दोनों आचार्यों ने, श्री राजीव गोस्वामी ने और श्री सनातन पाद गोस्वामी ने। आप 32वें अध्याय में ये पढ़ के आए हैं कि जब श्री कृष्ण गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए तो गोपियों ने श्री कृष्ण के लिए जो रतन सिंहासन होता है वो तो था नहीं, जमुना की जो बहुत सुंदर मृदु रज थी उसके ऊपर अपनी चुनड़ियाँ, जो उनकी चुनड़ियाँ थी जिसमें उन्होंने आंसू पोंछे थे, रोई थी और नाक से पानी आया था वो भी साफ किया था, और ऐसे वो सारी चुनड़ियाँ उन्होंने एक के ऊपर एक बिछा के उसको ऊपर कृष्ण को विराजमान कर दिया। तो कृष्ण को गोपियों के मध्य में ये इसी आसन के ऊपर विराजमान किया था। अब जब कृष्ण उठा और रास दोबारा शुरू हुई, गोपियों की पीड़ा समाप्त हुई, विरह की वेदना पूरी हुई, तो वो जो कपड़े थे नीचे जो उनके प्राय वक्ष स्थल को ढकने के लिए दुपट्टा, उसको नाम ही कहते हैं दुकुलम चोरम। कृष्ण किसको चोरी करता है? दुकुलम, दुपट्टे को चोरी करता है, जिसके दो पट्टे हों उसको उसको दुकुलम कहते, दुपट्टा ये उसके लिए शब्द है। तो वो जो नीचे रखी हुई थी ना चुनरियां जिसके ऊपर श्री कृष्ण को विराजमान किया था, अब कृष्ण जब वहां से उठे तो उन्होंने वो सब उठा लिया और फिर नृत्य से पहले अपने बालों को और कमर के ऊपर जो पट्टे थे उनको कस के बांधा, क्योंकि वो ढीले ना हो जाए, नृत्य में ढीले होने की संभावना है। तो ये इसका भाव लिखा है। तो कुछ पट ही का एक भाव यहां ये लिखा है, इसको ध्यान से समझना चाहिए कि चुनरिया जो पहले उन्होंने नीचे उतार के रख दी थी और कृष्ण को चारों ओर से पकड़ के बैठ गई थी, आपने इसके ऊपर चर्चा की होगी, उन्होंने प्रश्न जो कृष्ण से पूछा था कि कृष्ण उत्तर दो, प्यार करने वाले को से प्यार नहीं करता है वो कौन होता है, जो प्यार करता है उसके साथ प्यार करता है वो कौन होता है, और जो प्यार न भी करे कोई फिर भी प्यार करता है वो कौन होता है, और जो प्यार करे उसके पास उसको जाने ही नहीं वो कौन होता है, ये चार प्रश्न पूछे थे और कृष्ण ने उनका अच्छी तरह से उत्तर दिया था कि वो तो बहुत पागल है जो प्यार करने वाले प्यार नहीं करता है, जो प्यार करने वाले प्यार करता है वो संसार में मित्र हैं, और जो प्यार नहीं करो फिर भी प्यार करता है वो माता पिता है, तुम नहीं करो वो भी करेंगे, लेकिन प्यार करने वाले का पता ही नहीं लगे तो या तो पागल है या साधु संन्यासी है या कृतघ्न है। आप गोपियां एक दूसरे को देख के हंसने लगी कि देखो वो तीन तो ये हो नहीं सकता है, ये बाकी तीन में से साधु तो ये है नहीं, सन्यासी तो है नहीं, समाधि में है नहीं, पागल है नहीं, ये तो केवल कृतघ्न है। और गोपियों ने जब ये कहा तब कृष्ण ने दुपट्टा अपने हाथ में लेके हाथ जोड़ के गोपियों को प्रार्थना की कि ऐसे मत कहो गोपियां, मुझे कृतघ्न का मत कहो, क्योंकि कृतघ्न ऐसा शब्द है, रामायण में लिखा है, श्री रामचंद्र ने लक्ष्मण को कहा था कि सुग्रीव को बताना कृतघ्न के लिए कोई रास्ता नहीं है, कृतघ्न सबसे दुष्ट व्यवहार होता है। तो कृष्ण ये शब्द सुन के हाथ जोड़ के कहा न पा रहे हम, न पा रहे हम, न पा रहे हम, गोपियां आपका मैं ऋण नहीं उतार सकता, नहीं उतार सकता। तो वो चुनरियां जो नीचे रखी हुई थी उसको उठाने का यहाँ बात कह के आचार्यों ने मूर्खों के भाव को कि कपड़े नीचे उतर रहे थे ऐसा भाव लिखा है, आगे आएगा ऐसा भी है, पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं, पर क्या देखना चाहिए उस वक्त। माँ के स्तन में हम सब ने दूध पिया है, बच्चे रहे होंगे, ये भाव सबसे उत्तम भाव है कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के लिए, माता के भाव से सबको प्रार्थना करनी चाहिए, नहीं तो इस तरफ दृष्टि काम भाव की जाने वाला दुष्ट होता है। सो आगे कृष्ण वध्व के ऊपर जीव गोस्वामी के भाव का रसास्वादन कीजिए। ऐसे कृष्ण गोपियों के साथ व्यवहार कर रहा था जैसे वो उनकी पत्नियां हो। अब इसके लिए एक इस ऐसे आचार्यों ने इस लीला का कहीं वर्णन किया है कि जब ब्रह्मा जी ने ग्वाल बालों का 4 साल कृष्ण के बछड़े चराते हुए हरण किया था तो उस समय कृष्ण ही तो सब ग्वाल बाल बने थे, एक वर्ष तक कृष्ण सारे ग्वाल बाल बने हुए थे, सारे बछड़े बने हुए थे। उस साल सांडल्य ऋषि ने यह घोषणा कर दी कि जो इस वर्ष में अपनी कुमारी कन्याओं का विवाह गोपों से करेगा, ग्वाल बालों से, वो सदा ही स्वागन रहेगी। तो सारी ही ब्रज की 4 साल की बच्चियों का विवाह उन गोपों के, गोप व ग्वालों के बच्चों से हुआ जो केवल कृष्ण ही बना हुआ था। तो कृष्ण वध वो तो हो ही गई। और फिर दूसरा जो भाव है, गोपियों की पत्नियों के साथ श्री कृष्ण रासलीला कर रहा था, ये है परकीय भाव की परिकाष्ठा। परंतु वो विवाहित केवल तथाकथित क्लोन गोपियां थी जो जो पूर्णमासी ने, योग माया ने दो दो सेठ बना दिए गोपियों का। एक छाया गोपी, जैसे रावण छाया सीता को ले हर के ले गया, वास्तविक सीता तो अग्निदेव ने धरोहर के रूप में रखी, ऐसे छाया गोपियों का विवाह तथा कथित गोपों के साथ हुआ। ये तो गोपियां कृष्ण की नित्य प्रियस्य राधा रानी के विस्तार गोलोक से ही धरती के ऊपर आती हैं, इनको और कोई नहीं भोगता। और ये भोग भी प्रेम का भोग है, संसारी भोग नहीं है। तो यहां लिखा है, अब एक बात जीव गोस्वामी बहुत अच्छी कह रहे हैं, कह रहे हैं पहले उदाहरण दिया था कि स्वर्ण मणियों के बीच में महामरकट मणि है। अरे मणियां अलग भी हो सकती हैं, तो क्या गोपियां कृष्ण से कभी अलग हो सकती हैं क्या? ये संभव नहीं है। तो जो संबंध मणियों का, स्वर्ण मणियों का, आभूषणों का, जो मरकट मणि से है या नील मणि से है, वो अलग हो सकता है, वो संबंध सदा नहीं रह सकता है। इसलिए इस श्लोक में उदाहरण दे रहे हैं और फिर आगे लिखे हैं, अब यह चक्र जीव गोस्वामी कहते हैं वो थोड़े समय के लिए होता है, इसका अर्थ कृष्ण और गोपियां विवाहित नहीं है ऐसे लिखते हैं, इसका अर्थ ये हुआ, क्योंकि जो विवाहित नहीं है वो संबंध ज्यादा देर नहीं रह सकता है। तो विवाहित नहीं है गोपियां, इसके लिए तुलना दी गई स्वर्ण आभूषण के बीच में नीलमणि कृष्ण या महामरकट मणि कृष्ण का जड़ा हुआ होना। अब लिख रहे हैं इस श्लोक में उनके जो जो गहन संबंध है, अति मधुर संबंध है, उसका वर्णन किया जा रहा है। वो कृष्ण वधवत है, वो कृष्ण की पत्नियां हैं, क्योंकि उनका संबंध कृष्ण के साथ ऐसा है जैसे बिजली का बादल के साथ संबंध है। इसका मतलब ये विवाहित है, ये जीव गोस्वामी कहते हैं इसका मतलब ये विवाहित है। बिजली कभी बादल को छोड़ नहीं सकती, वो अलग हो नहीं सकती, और किसी को बिजली और बादल के चमकने से ये संदेह नहीं है कि ये एक दूसरे के साथ संबंधित नहीं है। इसलिए वो महान थी, उसके गुण, उन्हें कुछ प्रयास नहीं करना पड़ा, ये उनके स्वभाव में था। सनातन गोस्वामी पाद का वो भाव नीचे, अब बाकी तो वही बातें हैं, दोनों बातें, कपड़े की भी वही है, हाथों की भी वही है। कपड़े उठा लिए वो भी वही बात है। अब लिखते हैं स्वर्ण गोपियों के बीच में, ये जो वधु की परिभाषा सनातन गोस्वामी का रसास्वादन कीजिए। चल कुछ पटल ही का अर्थ हुआ नीचे पड़े हुए कपड़े उठा लिए। किसने उठा लिए? वधवन, कृष्ण वधवन है। वधु का अर्थ क्या लिखते हैं? स्वर्ण वर्ण की नारियां जिन्होंने पूर्ण कृष्ण का शरण लिया था। और कृष्ण कैसे थे? श्याम वर्ण के। और वो गाने लगी और इससे बिजली और बादल का उपमा दी गई है। वधु का दूसरा अर्थ है वो कृष्ण को बहुत प्रिय थी। और कृष्ण के साथ कला आत्मिक ढंग से और प्रेम पूर्वक जो उनका व्यवहार था और एक दूसरे को भ्रमित कर रही थी, ये स्वाभाविक था। और वो गाने लगी कृष्ण के विषय में। पराशर ने उस गान के लिए क्या लिखा है? कृष्ण शरचंद्रमासं, कृष्ण शरचंद्रमासं कौमुदीं कौमुदाकरं जगहु गोपी जनस्तव एकम कृष्ण नाम पुनः पुनः। कृष्ण शरद ऋतु का चंद्रमा है और चांदनी है और कमल है। गोपियों ने कृष्ण के नाम को बार बार कहा गाया, ये विष्णु पुराण में लिखा है। व्रजेहू का मतलब वो चमक रही थी और उनका नृत्य सबको कृष्ण को मदमस्त कर रहा था, प्रेम में मदमस्त कर रहा था। जैसे मदरा का नशा होता है वो प्रेम का नशा चढ़ रहा था और कृष्ण और गोपियों का आपस में मिलन हो रहा था। और इसलिए बहुत बड़ा एक उल्लास हो रहा था और बिजली का बादलों में चमकना सुंदरता को बढ़ाने का सूचक है। मेघ चक्र, कृष्ण रास मंडल में थे और ये उनकी नृत्य कला का वर्णन है, एक से अनेक होने का वर्णन है। इसका अर्थ है कि कृष्ण बादलों का एक समूह था और जब वो आपस में उनका नृत्य हुआ तो वो सुंदरता की चरम सीमा पे पहुंच गए। और गोपियों की सुंदरता और कृष्ण की मधुरता के कारण रास क्रीड़ा अपनी चरम सीमा के ऊपर पहुंचा। यहां आज हमारे इस श्लोक का पूर्ण आहुति हो रही है। हरे कृष्ण। सो हमने क्या सुना? हमने पांचवें श्लोक में सुना गोपियों के अपने निपुरों आदि के स्वर ताल और गाना, और फिर कृष्ण की सुंदरता गोपियों के मध्य में और भगवान और देवकी नंदन, और फिर गोपियों की सुंदरता कृष्ण के मध्य में उनके नृत्य के द्वारा दो उपमाएं दी गई। स्वर्ण मणियों के बीच में नीलमणि कृष्णा महामरकट के समान लग रहे थे और मेघ चक्र कृष्ण के बीच में गोपियां बिजली की तरह चमक रही थी। और कृष्ण वध सबसे महत्वपूर्ण शब्द है यहां हमारी आज के इस नित्य भागवत सेवा को पूर्णावती पे पहुंचाते हैं। आपका कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत सुंदर क्लास वापस, और ये लीला आपने बहुत सुंदर तरीके से सरलता से समझाई। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, आप अपना समय निकाल के हमारे लिए आते हैं। हरे कृष्णा। किसी कोई कोई प्रश्न हो तो प्लीज आप पूछ सकते हैं प्रभु से।
हरे कृष्णा। वो जैसे आ रहा है उसके साथ में आपके जा रहा हूं, कभी एक भाव कभी दूसरा भाव आ रहा है। तैयारी करके लिखा हुआ कुछ नहीं है मेरे पास। जो आचार्यों ने दिया है उसी को आपके सामने परोस रहे। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न नहीं है तो आशीर्वाद दे दीजिए। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। राम अवतार प्रभु जी, आपका माइक म्यूट है। राम अवतार प्रभु, आपका माइक म्यूट है, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा।
कौन बोलना चाह रहा है जिसका माइक म्यूट है? म्यूट है। रासलीला सुनने के बाद सबका माइक म्यूट ही होना चाहिए।
हरे कृष्ण प्रभु।
हरे कृष्णा।
प्रणाम प्रभु। धन्यवाद।
प्रणाम प्रणाम। बोलो बेटा।
प्रभु उधर 6 नंबर श्लोक में है, जैसे देवकी पुत्र बोला है, फिर यशोदा मैया का भी एक नाम देवकी रखा है।
लिखा नहीं तो है, लिखा है शास्त्र में, ये आदि पुराण में लिखा है। हाँ जी।
तो ये किस लिए, मतलब ये दो नाम का ये किया है उनका, थोड़ा सा आप ये कीजिए।
हमारे आचार्यों ने सिर्फ हमको ये बताना है कि जो यशोदा नंदन कृष्ण है वो स्वयं भगवान है, वो गोलोक विहारी है, वो ब्रह्मा जी के एक दिन में आते हैं और वो वृंदावन की सारी लीलाएं करते हैं। देवकी नंदन चतुर्भुज भगवान जो है वो तो धर्म की स्थापना के लिए, असुरों के संहार के लिए आते हैं। तो इसलिए दोनों एक ही हैं, फिर भी भाव में अंतर है, इसलिए ये शब्द भी जाके शास्त्रों से उन्होंने निकाला कि देवकी जब लिखा है रास में तो इसका अर्थ है स्वयं भगवान श्री कृष्ण यशोदा नंदन। ये बात हमको समझाने के लिए आचार्यों ने इस शास्त्रों के अंदर से ये अर्थ निकाला है। कल हमने आपको ये भी बताया था, तो फिर नंद को वासुदेव कैसे कहते हैं? वो नंद बाबा भी वसु का अवतार है, इसलिए उसको उसको वासुदेव कह सकते हैं। नंद का नाम भी एक वसुदेव हो जाएगा, ऐसे भी आचार्यों ने वर्णन किया है।
तो
कहने का, आपके प्रश्न का उत्तर ये है कि ये रास लीला यशोदा नंदन कृष्ण की लीला है। ब्रज की सारी लीला है यशोदा नंदन कृष्ण की, 11 वर्ष की। और फिर जब मथुरा जाते हैं, द्वारका जाते हैं, तो देवकी नंदन अपनी लीला शुरू करते हैं। दो नहीं है, एक है, कृष्ण भाव में अंतर है।
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
हरी हरी।
हरे कृष्णा। राम अवतार प्रभु, आपका माइक फिर भी म्यूट ही है, तो हम नहीं सुन पा रहे, आप क्या कहना चाहते हैं?
राम अवतार, राम अवतार में क्या बोला था?
भी उन्होंने वीडियो ऑफ कर दिया है। और कोई किसी का कोई प्रश्न हो टिल देन अभिषेक, एनी सीनियर डिवोटीज, अभिषेक प्रभु, जय गोविंद प्रभु कनेक्टेड, कुछ अनाउंसमेंट्स है, कुछ कहना है?
अगर किसी को कोई प्रश्न करना है तो अपना हाथ उठा सकते हैं।
हाँ जी, विशाल कुमार प्रभु जी, आप पूछ सकते हैं प्रश्न प्रभु।
बोलो।
हरे कृष्णा। विशाल कुमार प्रभु।
विशाल बोलो, विशाल कहाँ गया?
हरे
कृष्णा। विशाल कौन है? विशाल भाई पता तो लगे।
प्रभु जी मैं एक वीडियो भी ऑन करता हूँ, मैं काम पे बैठा हूँ। हरे कृष्णा।
धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद विशाल। ओके
प्रभु जी, जब भी हम कहते हैं भागवतम में आता है और आचार्य भी कहते हैं कि भगवान कृष्ण कभी वृंदावन छोड़ के नहीं जाते हैं, जब वो अक्रूर जी उनको लेने आए थे तो बाद में उन्होंने जब वो लीला देखी समुन्द्र के अंदर, यमुना मैया के अंदर, और बाद में बताते हैं कि कृष्ण कभी वृंदावन छोड़ के नहीं जाते हैं, तो इसको हम कैसे समझें?
इसको समझें कि जो यशोदा नंदन स्वयं भगवान श्री कृष्ण और महाप्रभु बलराम जी हैं आदि, वो कभी अक्रूर घाट से आगे नहीं जाते हैं, अप्रकट लीला में ब्रज में ही रहते हैं। वहां से देवकी नंदन कृष्ण और महासंकृष्ण बलदेव आगे जाते हैं और मथुरा और द्वारका की लीला करते हैं। हरे कृष्ण।
ऐसा सिंधु प्रभु, आपने हाथ ऊपर किया था, आपका कोई प्रश्न है?
हरे कृष्णा।
हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु।
प्रणाम प्रभु, कोटि कोटि प्रणाम
प्रभु।
मेरे प्रश्न था कि हमने बहुत बार सुना इसका राजलीला का महात्म्य में और भक्तों का श्रीमुख से, ये राजलीला का जो भगवान के अमृत को था, अगर सुनने से हमारा हृदय से बिल्कुल काम बसना दूर हो जाएगा, कुछ शून्य हो जाएगा, ताकि हम भगवान का वापस जा सके। तो ये राजलीला हमको ज्यादा सुनना चाहिए ताकि हमारा अंदर से काम बसना बिल्कुल शून्य हो जाए?
बहुत बात अच्छी है, लेकिन उससे सुननी चाहिए जिसमें काम वासना नहीं हो, तब ये काम होगा। वो लीला का फल तो यही है, काम वास काम के ऊपर विजय प्राप्त करना, लेकिन इसका अधिकार कहने का किसको है, सुनने का किसको है? अभी तो हम आचार्यों की बात को कह के ही अपना निश्चित रूप से इस लीला में काम के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए ही है, लेकिन जो इसके भाव को नहीं जानते हैं वो तो सहज या कामी भी हो जाते हैं। आप इस अध्याय के अंत में ये सब जो है श्रुति फल आएगा। समझने के लिए तो इतना सुनना चाहिए, अब हमारा वो स्तर नहीं है असल में। मर्यादा को पूरा करते हैं, भागवत को पढ़ के करना ही चाहिए, इस जीवन में फिर कब करेंगे, और बार बार करते रहना चाहिए। ऐसे भी ब्रज में साधु हैं जो रास पंचोध्या रोज पढ़ते हैं, उनका रोज का नियम है रास पंचोध्या पढ़ने का, लेकिन वो सब विरक्त महात्मा है, इसका मतलब विवाहित नहीं है, घर नहीं है, परिवार नहीं है, वो रोज पढ़ते हैं। चलिए हरे कृष्णा, फिर मिलेंगे। हरे कृष्णा,
बहुत बहुत धन्यवाद।
श्री प्रभुपाद की।
हरे कृष्णा।
हाँ जी, हरे कृष्णा।